नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। भारतीय बौद्धिक संपदा कार्यालय CGPDTM ने ट्रेडमार्क एजेंटों के चयन के लिए परीक्षा आयोजित करने की योजना की घोषणा की है। ये परीक्षा 10 साल के अंतराल के बाद अगले साल 7 मई को होगी। पेटेंट डिजाइन और ट्रेडमार्क महानियंत्रक ने कहा कि जो उम्मीदवार ट्रेडमार्क और पेटेंट एजेंट परीक्षा 2023 में शामिल होना चाहते हैं, वो नियमानुसार अपनी योग्यता की जांच कर सकते हैं। उम्मीद है कि परीक्षा के लिए उम्मीदवारों का ऑनलाइन पंजीकरण जनवरी 2023 में शुरू होगा। एक बयान में कहा गया, पेटेंट डिजाइन और ट्रेडमार्क महानियंत्रक का कार्यालय घोषणा करता है कि ट्रेडमार्क एजेंट परीक्षा 2023 और पेटेंट एजेंट परीक्षा 2023 का आयोजन 7 मई 2023 को किया जा सकता है। ब्रिटेन में मुद्रास्फीति की दर अक्टूबर में 41 साल के उच्चतम स्तर 11.1% पर पहुंच गई। ऐसे में इस मांग को मजबूती मिली है कि सरकार लोगों को राहत देने के लिए कदम उठाए। गौरतलब है कि ब्रिटेन में सरकार बृहस्पतिवार को नए करों और नए खर्च की योजना जारी करने वाली है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने बुधवार को कहा कि उपभोक्ता कीमतें अक्टूबर में सालाना आधार पर 11.1% की दर से बढ़ी। ये आंकड़ा इससे पिछले महीने सितंबर में 10.1% था। अर्थशास्त्रियों ने उम्मीद जताई कि अक्टूबर में मुद्रास्फीति का आंकड़ा 10.7% रहेगा। इस तरह वास्तविक आंकड़ा उनकी उम्मीद से अधिक रहा। ONS ने कहा कि खाद्य पदार्थों और ऊर्जा की ऊंची कीमतों के चलते महंगाई बढ़ी। भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद ने बुधवार को बताया कि पंकज पटेल को उसके शासी बोर्ड का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। पटेल जॉयडस लाइफ साइंसेस के चेयरमैन हैं। IIMA ने एक बयान में कहा कि पटेल ने कुमार मंगलम बिड़ला का स्थान लिया है, जिन्होंने मंगलवार को अपना 4 साल का कार्यकाल पूरा किया। पटेल IIMA के 14वें चेयरमैन होंगे। इससे पहले वो 8 वर्षों तक IIMA के शासी बोर्ड में सदस्य रहे हैं। पटेल ने कहा, मैं इस प्रतिष्ठित संस्थान का हिस्सा बनकर उत्साहित हूं और शासी बोर्ड, फैकल्टी सदस्यों, छात्रों, कर्मचारियों, पूर्व छात्रों के समूह तथा अन्य सभी संबंधित हितधारकों के साथ काम करने के लिए उत्सुक हूं। भारतीय परिधान निर्यात संवर्धन परिषद ने बुधवार को कहा कि उसके सदस्य अपने उत्पादों का प्रदर्शन करने और निर्यात बढ़ाने के लिए ऑस्ट्रेलिया के इंटरनेशनल सोर्सिंग एक्सपो में भाग ले रहे हैं। AEPC के चेयरमैन नरेन गोयंका ने कहा कि ये एक्सपो भारतीय परिधान निर्यातकों के लिए अपने परिधान डिजाइन और शैलियों को प्रदर्शित करने का एक बड़ा मंच है। उन्होंने कहा कि परिषद ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अन्य द्वीपीय देशों को निर्यात को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। उन्होंने कहा, ऑस्ट्रेलिया पारंपरिक रूप से भारतीय परिधान क्षेत्र के लिए एक बड़ा व्यापारिक भागीदार रहा है। हमारे परिधान निर्यात में ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा लगभग 4% है। हम हाल ही में हुए भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापार समझौते की सराहना करते हैं और हमें ऑस्ट्रेलियाई बाजार में एक मजबूत उपस्थिति की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि भारत गरीबी के खिलाफ जंग में तकनीक को हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने बेंगलुरु टेक समिट में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा कि भारत को अब लाल फीताशाही के लिए नहीं जाना जाता, बल्कि इसकी पहचान निवेशकों को हर तरह की सुविधा देने वाले देश के रूप में है। प्रधानमंत्री ने उद्घाटन भाषण में कहा कि 2021 के बाद से यूनिकॉर्न स्टार्टअप की संख्या दोगुनी हो गई है। मोदी ने कहा, भारत अब निवेशकों के लिए रेड कार्पेट के लिए जाना जाता है। चाहे FDI सुधार हो या ड्रोन नियमों का उदारीकरण या सेमीकंडक्टर क्षेत्र में कदम या विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन प्रोत्साहन योजनाएं या कारोबारी सुगमता, हर जगह ये बात दिखाई देती है। उन्होंने कहा, आपके निवेश और हमारे नवाचार से चमत्कार हो सकता है। आपका भरोसा और हमारी तकनीकी प्रतिभा मिलकर कुछ भी कर सकते हैं। मैं आप सभी को साथ काम करने के लिए आमंत्रित करता हूं, क्योंकि हम दुनिया की समस्याओं को हल करने में अग्रणी हैं। उन्होंने कहा कि भारत की प्रौद्योगिकी और नवाचार ने पहले ही दुनिया को प्रभावित किया है, लेकिन भविष्य में ये भूमिका और बड़ी होगी। मोदी ने कहा कि भारत के युवाओं की ताकत को पूरी दुनिया मानती है और उन्होंने तकनीकी तथा प्रतिभा का वैश्वीकरण सुनिश्चित किया है। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए अब तक 6.85 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए गए हैं। ये आंकड़ा 31 दिसंबर तक बढ़ सकता है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने ये जानकारी दी। व्यक्तिगत श्रेणी में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई थी, जबकि कॉरपोरेट और अन्य लोगों के लिए जिन्हें अपने खातों का ऑडिट कराने की जरूरत है, ये तारीख 7 नवम्बर 2022 थी। अगर कोई इस अंतिम तारीख तक रिटर्न नहीं भर पाता है तो वो दंड का भुगतान करके 31 दिसंबर तक रिटर्न दाखिल कर सकता है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के चेयरमैन नितिन गुप्ता ने कहा, अब तक आकलन वर्ष 2022-23 के लिए 6.85 करोड़ कर रिटर्न दाखिल किए गए हैं और हमें उम्मीद है कि ये संख्या 31 दिसंबर तक बढ़ेगी। मेदांता ब्रांड के तहत अस्पतालों का संचालन करने वाली कंपनी ग्लोबल हेल्थ के शेयर बुधवार को अपने निर्गम मूल्य के मुकाबले 19% प्रीमियम के साथ 336 रुपये के भाव पर सूचीबद्ध हुए। कंपनी के शेयर BSE पर 18.49% की तेजी के साथ 398.15 रुपये के भाव पर सूचीबद्ध हुए। बाद के कारोबार में शेयर 21.72% बढ़कर 409 रुपये पर पहुंच गए। NSE में ग्लोबल हेल्थ के शेयर 19.34% बढ़कर 401 रुपये पर सूचीबद्ध हुए। कंपनी के IPO को 9.58 गुना अभिदान मिला था। ग्लोबल हेल्थ 319 से 336 रुपये प्रति शेयर के भाव पर IPO लाई थी। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए INJANSATTA.com पर नमस्कार।